दोपहर अब धीरे धीरे ढलने लगी थी। हवेली के विशाल आंगन में फैली धूप का रंग सुनहरा होने लगा था। कहीं दूर आम के पेड़ों पर बैठे तोतों की आवाजें गूंज रही थीं। बरामदे में टंगे पुराने पीतल के घंटे हवा के हल्के झोंकों से बहुत धीमी धीमी ध्वनि कर रहे थे। ऊपर वाले कमरे में शांति पसरी हुई थी। एसी की ठंडी हवा कमरे को सुकून दे रही थी। खिड़की के पास रखा पर्दा बीच बीच में हल्का सा लहराता और फिर स्थिर हो जाता। विश्वनाथ ऑफिस के लिए निकल चुका था। जाने से पहले वो कई बार नौकरों को समझाकर गया था कि समय पर दवा देनी है, खाना खिलाना है और अगर जरा भी तबीयत बिगड़े तो तुरंत उसे फ़ोन किया जाए। कमरे में अब केवल शामली और उसके सिरहाने बैठी सुषमा देवी थीं। उम्र ने उनके बालों को पूरी तरह सफ़ेद कर दिया था, लेकिन चेहरे पर वही ममता थी जो किसी माँ की गोद में मिलती है। वे धीरे धीरे शामली के सिर पर हाथ फेर रही थीं। कभी उसके माथे को छूकर तापमान देखती, कभी कंबल ठीक कर देती, तो कभी प्यास से उसके गाल पर हाथ फेर देती। शामली उनींदी आंखों से उन्हें देख रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। मौसी जी। हाँ मेरी बच्ची, आप कब से यहीं बैठी हैं? सुषमा देवी मुस्कुरा दी। जब से विश्वनाथ गया है। अरे इतनी देर से? हाँ। शामली ने थोड़ा उठने की कोशिश की। आप जाइए ना, मैं अब पहले से ठीक हूँ, बस थोड़ा सा बुखार है। आप भी कब से बैठी हैं? कमर में दर्द हो जाएगा। सुषमा देवी ने तुरंत उसे फिर से तकिए का सहारा देकर आराम से लिटा दिया। चुपचाप लेटी रह, शामली मुस्कुराकर बोली। देखा, बिल्कुल माँ की तरह डांट रही हैं। क्योंकि तू मेरे लिए बेटी से कम है क्या? कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सुषमा देवी ने उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बहुत धीमे स्वर में कहा, ऐसे कैसे चली जाऊं? तू हमेशा इस पूरे परिवार का ख्याल रखती रही है। किसे क्या पसंद है, किसे कब दवा देनी है, कौन परेशान है, कौन उदास है, सब तुझे याद रहता है। उनकी आवाज़ भर्रा गई। जब मैं घुटनों के दर्द से चल नहीं पाती थी, तब रोज मेरे कमरे में आकर तेल से मालिश कौन करता था? जब रात को मुझे खांसी उठती थी, तब बिना आवाज़ दिए गर्म पानी कौन लेकर आता था? जब रत्ना की तबीयत खराब हुई थी, तब तीन रात तक खुद जागकर उसकी सेवा किसने की थी? उन्होंने प्यार से उसके बालों को सहलाया। तूने कभी किसी से हिसाब नहीं मांगा, कभी एहसान नहीं जताया। तो अब अगर मेरी बेटी बीमार है तो क्या मैं उसका सिरहाना छोड़कर चली जाऊं? शामली की आंखें भर आईं, वो कुछ बोल नहीं पाई। सुषमा देवी ने उसके गाल पर आंसू की एक बूंद देख ली। अरे रो क्यों रही है पगली? शामली ने होंठ भींच लिए। कुछ नहीं, मुझसे भी छिपाएगी? शामली की आवाज़ कांप गई। बस अच्छा लग रहा है, इतना अपनापन, इतना प्यार। कभी कभी डर लगता है कि कहीं मैं सबके लायक तो हूं ना। सुषमा देवी ने तुरंत उसका हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। ऐसी बात दोबारा मत कहना। प्यार का हक कमाया नहीं जाता, महसूस किया जाता है, और तूने इस घर का प्यार अपने व्यवहार से जीता है। शामली अब खुद को रोक नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह सुबकने लगी। सुषमा देवी ने तुरंत उसे अपनी ओर खींच लिया। आजा। उन्होंने बहुत प्यार से उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। उनकी उंगलियां धीरे धीरे उसके बालों में चलने लगी। जिस तरह कोई माँ अपने डरे हुए बच्चे को चुप कराती है, ठीक उसी तरह वे उसके सिर पर हाथ फेरती रहीं। शामली ने आंखें बंद कर लीं। उसे बरसों बाद वैसा सुकून महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद सुषमा देवी दूर कहीं देखते हुए बोली, जानती है, एक बात आज भी मुझे अंदर से कचोटती है। शामली ने धीरे से उनकी ओर देखा। कौन सी बात? उन्होंने गहरी सांस ली। एक समय था जब मैं तुझे बिल्कुल गलत समझती थी। मुझे लगता था कि तू सिर्फ दिखावे के लिए सब करती है। तेरी हर मुस्कान मुझे बनावटी लगती थी। जब लोग तेरी तारीफ करते थे, तब मैं सोचती थी कि ये सब नाटक है। और आज? उनकी आंखें भी नम हो गईं। आज जब वही दिन याद आते हैं ना, तो सबसे ज्यादा गुस्सा किसी पर आता है तो खुद पर। सोचती हूँ मैंने इतनी अच्छी लड़की को बिना समझे कितना गलत परखा। उन्होंने हल्के से शामली के माथे को चूम लिया। काश मैं तुझे पहले पहचान पाती। शामली ने उनकी गोद में लेटे लेटे उनका हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज़ बेहद धीमी थी। मौसी जी, आपको खुद को दोष देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। रिश्तों में गलतफहमियां हो जाती हैं, लेकिन आपने जब सच जाना तब मुझे अपना लिया। वो मुस्कुराने की कोशिश करती हुई बोली, आपका प्यार भी मेरा था और आपकी नाराज़गी भी मेरी थी, क्योंकि मैं हमेशा आपको अपना मानती रही। अपने लोगों की डांट भी बुरी नहीं लगती, उनकी नाराज़गी में भी अपनापन होता है। सुषमा देवी की आंखों से भी आंसू निकल पड़े। उन्होंने कांपते हाथों से शामली का चेहरा सहलाया। बेटी, भगवान हर घर को तेरे जैसी बहू दे, जिसके मन में अपने लिए नहीं सबसे पहले परिवार के लिए जगह हो। शामली ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, और हर बहू को आपके जैसी मौसी जी भी मिले। दोनों हल्का सा हंस पड़े। कमरे का भारी माहौल कुछ हल्का हो गया। सुषमा देवी ने प्यार से उसके माथे पर हाथ रखा। अब ज्यादा बातें नहीं, आराम कर, बुखार अभी पूरी तरह उतरा नहीं है। उन्होंने बहुत स्नेह से कंबल ठीक किया और उठने लगी। श्यामली ने उनका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हैं? जरा नीचे मंदिर तक, तेरी सास वहीं बैठी है, सुबह से भगवान के सामने दीपक जलाकर तेरे लिए प्रार्थना कर रही है। कह रही थी, हे ठाकुर जी, मेरी बहू जल्दी ठीक हो जाए, उसकी तकलीफ मुझे दे देना। ये सुनते ही श्यामली एकदम चौंक गई। क्या? उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। माँ जी मंदिर में है? हाँ। सुषमा देवी मुस्कुराई। सुबह से कई बार समझाया कि थोड़ी देर आराम कर लो, लेकिन मानती ही नहीं, बस एक ही बात कह रही है, जब तक मेरी बहू का बुखार पूरी तरह नहीं उतर जाता, मैं यहीं भगवान के सामने बैठूंगी। श्यामली की पलकों पर फिर नमी उतर आई। वो धीमे स्वर में बोली, मैं तो बस थोड़ी सी बीमार हूँ, डॉक्टर भी कह गए हैं कि सुबह तक ठीक हो जाऊंगी, लेकिन आप सब, उसकी आवाज भर्रा गई, आप सब सचमुच मेरी इतनी फिक्र करते हैं, इतना प्यार? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे इस घर में इतना अपनापन मिलेगा। सुषमा देवी उसके पास झुककर बोली, पगली, परिवार का मतलब ही यही होता है, जब एक सदस्य को हल्का सा दर्द होता है तो तकलीफ पूरे घर को महसूस होती है। आज तू बीमार है, इसीलिए पूरा घर तेरे साथ खड़ा है, और जिस दिन हम में से कोई कमजोर पड़ेगा, हमें पता है कि सबसे पहले हमारा हाथ पकड़ने वाली भी तू ही होगी। उन्होंने उसके सिर पर स्नेह से हाथ फेरा। अब आंखें बंद कर, मैं रत्ना को लेकर आती हूँ, और हाँ, अगर 5 मिनट में सोई नहीं तो वापस आकर फिर से डांट भी पड़ने वाली है। श्यामली बच्चों की तरह मुस्कुरा दी। जी मौसी जी। सुषमा देवी संतोष भरी मुस्कान के साथ कमरे से बाहर निकल गईं। दरवाजा धीरे से बंद हुआ। कमरे में फिर वही शांति लौट आई, लेकिन इस बार श्यामली के चेहरे पर बुखार की थकान के साथ साथ एक गहरा सुकून भी था। उसने आंखें बंद कर ली। आज उसे पहली बार पूरी तरह महसूस हुआ कि ये हवेली अब केवल उसका ससुराल नहीं रही, ये सचमुच उसका अपना घर बन चुकी थी।